वही घर के बाहर
दिवा
दिन के समय नक्तम रात्रि के समय अन्यस्मात् ब्रह्मा के परे अन्य किसी से अभी भी आयुध है इस जगत में प्रयुक्त होने वाले किसी भी हथियार से
की प्रार्थना की जिससे कि वह इन लोगों में से
किसी के निवासी द्वारा ना मारा जा सके। आदि देवता तीन है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर। हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी उसे नहीं मारेंगे, किंतु वह यह भी जानता था कि विष्णु या महेश्वर भी उसका विरोध ना करें। अतः उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की। इस तरह हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह इस ब्रह्मांड के भीतर किसी भी जीव द्वारा किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि ऐसी मृत्यु घर के भीतर या घर के बाहर हो सकती है। तो मृत्यु से हर कोई इस संसार में रियली भागना चाहता है, सभी लोग मृत्यु से भागना चाहते हैं। कोई ये नहीं तैयार बैठा, हाँ हाँ आ जाओ मृत्यु। एक पंजाबी बाग में रहने वाला व्यक्ति को एक बार पता चला कि आने वाले संडे को उसकी मृत्यु आने वाली है, यमदूत लोग आएंगे उसको लेने पंजाबी बाग। तो सैटरडे को उसने बस पकड़ ली कि मैं नजफगढ़ चला जाता हूं, यमदूत तो मुझे लेने के लिए पंजाबी बाग आने वाले। तो जब नजफगढ़ गया तो वहां पे बिग बाजार में शॉपिंग कर रहा था। कोई जानता है बिग बाजार? जब बिग बाजार में शॉपिंग कर रहा था तो देखा, जब कोने में को गया, एक पिलर के पीछे एक बहुत खूंखार लुकिंग राक्षस लुकिंग पर्सन वहां खड़ा हुआ था। तो उसने बोला, अरे कौन हो तुम? कि मैं तो यमदूत हूं। ओ यमदूत हो, किसको लेने आए? कि मैं कई सारे लोगों को लेने आया हूं। आप कौन हो? कि मेरा नाम राजकुमार है, मैं देखता हूं कि मेरे पास तो लिस्ट है यहां कितने लोगों को लेने आया हूं। तो मेरा नाम तो नहीं है लिस्ट में। कि नाम क्या है आपका? कि मेरा नाम राजकुमार। अच्छा देखता हूं। हाँ आपका नाम तो है लिस्ट में। तो ये आदमी स्मार्ट था, दिल्ली वाला था, दिल्ली वाले लोग स्मार्ट होते नहीं, पंजाबी बाग के मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा स्मार्ट होते। कि जरा चेक करो आपकी लिस्ट में मेरा नाम पंजाबी बाग के लिए लिखा होगा। वो ये कंफर्म करना चाह रहा है कि जब मेरा समय आएगा कल को तो ये पंजाबी बाग जाएगा मुझे ढूंढने, मैं तो नजफगढ़ में हूं। तो उसने लिस्ट चेक करी, कहता नहीं नहीं राजकुमार का नाम तो नजफगढ़ में ही लिखा हुआ है। So what it says is, जितना हम मृत्यु से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही हमारे नजदीक आती है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने ऐसी कोशिश करी है। आपने सुना होगा इजिप्ट में वो बने हुए हैं पिरामिड्स, क्या कहते हैं हिंदी में, कैसे कहते हैं पिरामिड्स? हाँ पिरामिड हिंदी में भी सेम, वो पिरामिड बने हुए हैं, उसके अंदर या नीचे या कुछ कुछ उस समय के जमाने के राजा महाराजाओं के शरीर ममीज बना के अभी तक रखे। क्यों? उनको ये था कि किसी तरह से ये मेरा शरीर जो है ना, मर भी जाऊं तो उसको प्रिजर्व कर लेना, हो सकता है कल को मैं वापस आऊं उसमें। शरीर इतना अच्छा है मेरा, पता नहीं उसको मलमूत्र का बैग है वो, लेकिन उसको लग रहा है, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारा शरीर कितनी अच्छी चीज है। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार वो मलमूत्र का बैग है और कुछ नहीं, जिसमें मलमूत्र कैरी किया जाता है वो बैग है। बुरा नहीं मानो मेरी बात का, मैं नहीं कह रहा किसी को ऐसा, किसी को नहीं ऐसा लगे कि मैं किसी को गाली दे रहा हूं, तो शास्त्रों में ऐसा बताया मलमूत्र का बैग। तो ये राजाओं को ये चिंता कि मेरा इतना अच्छा सुंदर शरीर ऐसे ही चला जाएगा, तो इसको कुछ प्रिजर्व करने का तरीका निकालो, हो सकता है कल को मैं वापस इसमें आऊं। तो वो जो ममीज है, आपने नाम सुना होगा ममीज, वो आम आदमियों की नहीं है ममीज, वो राजाओं की, बड़े बड़े दिग्विजयी राजा उनकी ममीज बनाई थी। चाइना में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, चाइना की हिस्ट्री हमें यहाँ कम सुनने को मिलती है, जब मैं स्कूल गया तो चाइना की हिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ाई जाती थी, अब पढ़ाई जाती है। चाइना वास्तव में एक बहुत बड़ा भयंकर देश है, बहुत बड़ा देश है, इंडिया से कई गुना बड़ा है, माय मीनिंग एटलीस्ट ट्वाइस और मोर। हमें यहाँ पे इंप्रेशन दिया जाता है कि चाइना एक बहुत छोटी सी कंट्री है, इट्स नॉट, सही तरह से इंडिया से बहुत बड़ा है। तो चाइना एक देश कैसे बना, क्योंकि पुराने समय में एक राजा बहुत दूर तक राज्य नहीं कर पाता था, इसलिए छोटे छोटे राज्य हुआ करते। तो एक वहां पे बहुत बड़ा दिग्विजयी राजा हुआ था, जिसने चाइना के सारे एरिया के सारे राजाओं को हरा के सबको मार दिया, बुचर कर दिया, जो उसको सरेंडर भी करता था वो उसको भी बुचर कर देता, इतना निर्दयी। सिस्टम इज somebody surrender to you, you accept, you don't kill them. But he used to butcher the kings who have lost, जो उससे हार भी गए, जो उसको नतमस्तक भी हो गए, तो भी उनको मार दिया। तो जब उसका अंत समय आया तो उसको ये डर था कि ये सारे राजा लोग जिनको मैंने मारा है, सैकड़ों राजा लोग मैंने अपने हाथ से बुजर किए, इतना निर्दयी था, अपने हाथ से मारता था, ये सैकड़ों राजा लोग और उनके परिवार और उनके मेन मेन सेनापति वगैरह जो थे, उनको अपने हाथ से मैंने बुजर किया, तो वो लोग अब मैं जाऊंगा परलोक, जो कोई भी परलोक होता है उन लोगों के लिए, तो अब मैं परलोक जाऊंगा, तो वहां मैं तो परलोक अकेला जाने वाला हूं और वहां वो सारे मिलके होंगे, तो सब मिलके मुझे अटैक करेंगे। तो बड़ी समस्या अब उसको, सारे जीवन के किए हुए पाप का पश्चाताप याद आ रहा, पश्चाताप भी नहीं है बल्कि अभी भी वो पश्चाताप नहीं कर रहा, बल्कि वो उसको पाप अभी खाली सामने नजर आ रहे हैं कि जब मैं परलोक में जाऊंगा तो ये सब लोग मुझे मारने के लिए अपनी तलवारें लेके तैयार खड़े होंगे। अरे तू तो पहले ही मर चुका है परलोक में जाने से, तुझे कौन मारेगा परलोक में जाने के। देखे हैं, उसको ये चिंता कि सब वहां खड़े होंगे अपनी तलवारें लेके और सब मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे और मैं अकेला कितने भी अस्त्र शस्त्र में साथ में ले जाऊं मरते समय, लेकिन कोई वो तो बहुत सारे होंगे, इतने सारों को मारा है मैंने, सब वहां परलोक में खड़े होके टीम बना के मेरी वेट कर रहे होंगे वहां, तो क्या करो, मेरे साथ में आर्मी जाएगी 7 लाख की आर्मी उसके साथ में गई परलोक। कैसे के 7 लाख पुतले बनाओ पत्थर के, 7 लाख पत्थर के पुतले बनाए गए और जिस समय उसको दफनाया गया वो 7 लाख पत्थर के पुतले साथ में दफनाए गए कि अब ये जाएगा तो ये 7 लाख साथ में जाएंगे परलोक। और वहां पे जो राजा लोग हैं जिनको इसने निर्दयता से मारा है, अगर वो उसको पर अटैक करेंगे तो ये 7 लाख की आर्मी इसके साथ में। Nobody is laughing. This is such a good joke. This is real history. It really happened. मुझे भी वही लग रहा था, इतना निर्दयी तो सेना को भी मार देगा कि चलो यू हैव टू बी किल्ड राइट अलोंग। लेकिन हो सकता है मारे भी हो, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री है, इतनी नई नहीं है, कई हजार साल हो गए। इवन आई थिंक इट्स इवन बिफोर द बुद्धास वेंट टू चाइना, ही इज गिवन द क्रेडिट फॉर यूनाइटिंग मोस्ट ऑफ चाइना, somebody had to unite it, नहीं तो सब जगह जैसे इंडिया को यूनाइट करने का जो क्रेडिट है वो ब्रिटिश को जाता है, ब्रिटिश से पहले मुगल्स इंडिया को रूल करने तो आए बट दे वर नॉट एबल टू यूनाइट इंडिया, वो एक इंडिया नहीं बना पाए, बहुत सारे डिफरेंट देश और अलग अलग राजा अलग अलग शेख इनके अपने भाइयों में ही झगड़ा होता था, फिर किसी सेनापति को एक तरफ कॉन्कर करने भेज दिया तो वो सेनापति ही वहां जाके राजा बन के बैठ जाता, बस आज से मैं इधर का राजा मैं हूं, जिसको बादशाह अपने आप को कहना है आ जाओ और कर लो मेरे साथ। तो जाते 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 सारी आर्मी सब कुछ मुगल बादशाह ने प्रोवाइड किया इनको कि जाओ हमारे बिहार में जाके लड़ो और वो जाके वो एरिया कॉन्कर करो, वो कॉन्कर करके ये लोग सेनापति वहां खुद ही जम जाते कि बस आज से हम ही राजा। तो इस तरह से द मुस्लिम्स और द मुगल्स दे वर नॉट नेवर एबल टू यूनाइट इंडिया, वो नहीं कर पाए किसी भी तरह से, क्योंकि ये आप कभी कभी सुनोगे वफादारी की स्टोरी, लेकिन वो गिनती की है, वफादारी का उल्टा क्या होता है, बेवफाई, बेवफाई की स्टोरी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा, ना तो कोई भाई अपने भाई का, ना कोई सेनापति अपने राजा का, कोई किसी का नहीं, सबने अपना अपना डिवाइड करके अपने अपने वो बना लिए। बट द ब्रिटिश वर एबल टू यूनाइट इंडिया अंडर वन बैनर फॉर मोस्ट ऑफ इट, गोवा नहीं आया, पांडिचेरी नहीं आया, पांडिचेरी में फ्रेंच का रूल रह गया, गोवा में पोर्चुगीज का रह गया, और भी कुछ छोटे मोटे पॉकेट्स ऐसे हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट सारा इंडिया जो ब्रिटिश ने यूनाइट कर लिया एक साथ में। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को यूनाइट करके इंडिया की इंडिपेंडेंस हमें अपनी मर्जी से दे गए, जैसा कि आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ोगे श्रील प्रभुपाद की बुक्स में कोई दूसरी हिस्ट्री लिखी है? हमारे हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश ऑन देयर ओन अकॉर्ड दे एग्री टू यस ओके वी गिव इंडिया बैक, लेकिन श्रील प्रभुपाद की बुक्स में दूसरी हिस्ट्री बताई हुई। क्या बताई हुई, किसी ने बताया, चर्चा की है? यहां इंडिया को इंडिपेंडेंस किसने दिलाई? श्रील प्रभुपाद कहते हैं हिटलर ने। हिटलर, एवर हर्ड? नोबडी हर्ड। एनीबडी एवर हर्ड? महाराज को हर्ड, महाराज हर्ड। हिटलर, श्रील प्रभुपाद सेड दैट हिटलर वॉज इन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया, नॉट डायरेक्टली, दैट वॉजंट हिज मिशन, ये उसका कार्य नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली उसने ऐसा किया। कैसे? हिटलर जर्मनी से चला ब्रिटिश को अटैक करने के लिए, तो यहां तक जब आ गया, और पहले भी जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी श्रील प्रभुपाद बताते हैं सबसे पहले गुरखे पहाड़ के हमारे, दे वर फियर्स फाइटर्स, तो ब्रिटिश गुरखों को सबसे आगे रखते थे, सबसे आगे गुरखे, दैट इज ब्रिटिश आर्मी ना, नॉट इंडियन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, गुरखे सबसे आगे, गुरखों के पीछे सिख सरदार, उनके पीछे जाट, जाटों के पीछे बाकी की आर्मी, और उसके पीछे ब्रिटिश खुद। दिस वॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ देयर आर्मी। सो वॉट वुड हैपन, द इंडियन आर्मी रियली द इंडियंस बॉडीज दे आर फेसिंग हिटलर्स आर्मी। हिटलर की आर्मी बहुत खतरनाक थी, सारी दुनिया पे ऑलमोस्ट विजय प्राप्त कर ली थी, बहुत खतरनाक थी। तो हमारे गुरखे बहुत फियर्स फाइटर्स थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे युद्ध में मारे गए और बहुत सारों को उन्होंने युद्ध में बंदी बना लिया, सिखों को भी, जाटों को भी, बाकी की भी आर्मी, बहुत सारे युद्ध बंदी हिटलर के पास हो गए हमारे आर्मी में। तो हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने कांटेक्ट किया कि यू गिव मी माय इंडियन मैन, जो आपके प्रिजन हाउसेस में, ही हैड बिग बिग, ही हैड कन्वर्टेड स्मॉल सिटीज इनटू प्रिजन हाउसेस, इतने वॉर प्रिजनर्स थे हिटलर के पास कि छोटे छोटे शहरों को उसने पूरा प्रिजन हाउस में कन्वर्ट कर दिया था, जाले वाले लगा के कि कोई जो कैदी यहां से भाग नहीं पाए, और बेड़ियां भी डाल रखी है जिससे कि उनको देखभाल करने के लिए गार्ड बहुत कम लगे, फैसिलिटी भी है, जी भी सकते हैं लेकिन भाग भी नहीं सकते, और बहुत ज्यादा गार्ड नहीं चाहिए क्योंकि जर्मन गार्ड वहां लग जाएंगे तो आगे युद्ध कौन करेगा, सारी दुनिया को तो जीतने चला है। तो इस वजह से उसने कहा देख, इफ यू गिव मी माई इंडियन मैन, यू डोंट हैव टू कीप देम इन द प्रिजन, गुड फॉर यू, यू वॉन्ट टू फाइट ब्रिटिश, आई वॉन्ट टू फाइट ब्रिटिश, ब्रिटिश को आप भी आक्रमण करना चाहते हो, अटैक करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूं। आगे से आप ब्रिटिश को अटैक करने जाते हो तो उन्होंने दुनिया भर के कवच पहने हुए ये इंडियन आर्मी के, ब्रिटिश को तो आप पहुंच नहीं पाते, तो मैं ये आपसे वॉर प्रिजनर्स लेके इनके साथ एक आर्मी बना के ब्रिटिश को पीछे से अटैक करूंगा। तो समहाउ और अदर हिटलर लाइक द प्लान कि मैं तो केवल आगे से अटैक कर सकता हूं, ये तो मेरे दुश्मन को पीछे से अटैक करने वाला। तो सुभाष चंद्र बोस ब्रॉट दिस आर्मी एंड अटैक्ड द ब्रिटिश फ्रॉम बिहाइंड। जब ब्रिटिश को पीछे से अटैक हुआ तो वो हट गए, इंडियंस को कहा चलो इनको फेस करो, ये आर्मी पीछे से हमें अटैक कर रही है, बागी है ये लोग। जब इंडियन आर्मी को कहा इंडियंस को अटैक करो, हमने करेंगे, दे आर आवर्स, ये तो युद्ध में बंदी बन गए थे, ये तो हमारे भाई हैं, हम नहीं इनको अटैक कर सकते, और उन्होंने हथियार डाल दिए। नाउ द ब्रिटिश से ये कंट्री को तो हम रूल ही नहीं कर सकते, यहां आर्मी हमारी बात नहीं सुनती, जब हमारी अपनी फोर्सेस हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कैसे रूल करेंगे इस देश को। दैट्स इट, वी गिव अप। तो जो उनके बड़े चीफ जनरल लोग थे उन्होंने विक्टोरिया को कह दिया, क्वीन विक्टोरिया को, दिस इंडियन आर्मी इज कंप्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल, दे हैव लिसन टू अस फॉर 200 इयर्स, टुडे दे आर रिफ्यूजिंग, एब्सोल्युटली रिफ्यूजिंग, दे आर रेडी टू डाई बट दे वुड नॉट लिसन, आई से यू किल अस बट वी आर नॉट गोइंग टू अटैक आवर ब्रदर्स, दे आर आवर्स, इफ यू वॉन्ट टू किल अस यू किल अस, but you're not going to have us fight our own brothers, it's just not going to do it, hum nahi kar sakte apne bhaiyon ke upar, hum goli nahi chalayenge, wo saathi hain hamare, hum unke upar nahi chalayenge। to Srila Prabhupada mentions this several, I have assembled this information several different places, Srila Prabhupada gives this background in purports and lectures, नहीं तो आई हैव नो वे ऑफ नोइंग ऑल दिस, चलो प्रभुपाद हो गिव्स द इंफॉर्मेशन। तो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम डेथ, सो हियर हिरण्यकशिपु इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर, चलो प्रभुपाद कहते हैं घर के अंदर नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं, इसका मतलब उसने जो प्राकृतिक मृत्यु है उसके ऊपर समझ रहा है विजयपाली कि प्राकृतिक मृत्यु कहां आएगी, या तो घर में या घर के बाहर, तो वो मृत्यु आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब प्राकृतिक मृत्यु तो मेरी हो ही नहीं सकती, छुट्टी, प्राकृतिक मृत्यु से तुम मरने वाला नहीं हो। दूसरा, ना दिन के समय ना रात में, कोई अटैक करेगा तो या दिन में करेगा, ज्यादातर राक्षसों के आपस में जो युद्ध होते हैं वो रात को होते हैं, ये लोग दिन में नहीं, दिन में कम और रात को ज्यादा पावरफुल होते हैं। ना दिन में ना रात में, अगर दिन में कोई मनुष्य या कोई और सेनाएं अटैक करेंगे तो दिन में करेंगे, दूसरे राक्षस करेंगे निशाचर जो रात वाले हैं वो रात को, तो ना दिन में ना रात में, दोनों से इम्यून हो गया मैं, ना भूमि पर ना आकाश में, आर्मी एयरफोर्स और नेवी भी आर्मी के साथ में आ गई, क्योंकि पानी में भी, आकाश में तो पानी नहीं होता, और भूमि उसमें साथ में आर्मी ने भी एयरफोर्स तीनों उसने कवर कर लिया। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के, ये हिंदी की ट्रांसलेशन पता नहीं कैसे की हुई है, आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के भी अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा ना हो। मीनिंग कहना ये चाहते हैं कि जो आपके द्वारा उत्पन्न किया गया है उससे नहीं हो, और जो आपके द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया उससे भी नहीं हो। रियली ही थॉट ही कवर्ड 100%, या तो किसी को ब्रह्मा ने बनाया है या नहीं बनाया है। मुझे वर दे, ओ ओके, ना किसी हथियार से, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं पर्पट में कि क्योंकि इसके भाई को हिरण्याक्ष को भगवान वरा रूप में आके पशु रूप में मार गए, वरा। जैसे नरसिंह देव की डिस्क्रिप्शन है, हाफ लायन हाफ मैन, ऐसे वरा की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हाफ बोर्ड हाफ मैन, इज इट? इट्स जस्ट बोर्ड। यू नेवर केम अक्रॉस हाफ बोर्ड हाफ मैन? आई हैव इट ऑन अ स्लाइड शो, मे बी टुमारो आई कैन शो यू द स्लाइड शो, टुमारो विल स्टिल बी डूइंग द सेम सिमिलर पास्ट लाइन। सो आई विल शो यू आउटसाइड बोर्ड एंड आवर बोर्ड, इस्कॉन बोर्ड, इस्कॉन बोर्ड इज बोर्ड, इट्स नॉट हाफ बोर्ड हाफ मैन। लॉर्ड नरसिंह दे इज हाफ लायन हाफ मैन, आधे मनुष्य और आधे नर है, लेकिन वरादेव वैसे नहीं, वो आधे शुकर और आधे नर नहीं बताए गए, कम से कम मैंने नहीं सुना। और हमारे जो पिक्चर्स भी हैं वो पूरी तरह से बोर उनको दिखाते हैं, पूरी तरह से शुकर उनको दिखाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं पर्पट में कि डरा हुआ है कि पशु के रूप में कहीं फिर से आके नहीं विष्णु मुझे मार दे, जैसे वराह के रूप में आके, शुक्र के रूप में आके मेरे भाई को मार दिया, तो सारे पशुओं से ये इम्यून हो गया। शब्द है मृग है, लेकिन अर्थ है कि उसमें मृगे का हो तो सारे पशु उसमें आ जाते हैं, ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन मृगे। ना किसी हथियार से हो, अगर शिव जी आएंगे तो त्रिशूल चलाएंगे, ब्रह्मा जी तो वैसे भी कभी किसी को मारते नहीं है, कभी किसी ने कोई डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि ब्रह्मा ने किसी को मारा हो, वो तो कभी किसी को चाटा भी नहीं मारते बेचारे, जान से मारना, हत्या करना, किसी के ऊपर अटैक करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी ऐसा डिस्क्रिप्शन भी नहीं सुना कि ब्रह्मा ने किसी को चाटा भी मार दिया होगा, वो तो नहीं मार। हिरण्यकशिपु को तीनों में से एक से तो बिल्कुल डर नहीं, ब्रह्मा से तो डरने का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो क्या किसी को मारने वाले नहीं है। वो बात और है कि मृत्यु सबकी ब्रह्मा के थ्रू ही आती है, वराह भी ब्रह्मा की नाक में से ही आए, लेकिन स्वयं ब्रह्मा ने किसी को नहीं मारा और उसको नहीं लगता कि ब्रह्मा जी मुझे मारने वाले। शिव जी क्या करेंगे, त्रिशूल ही चला लेंगे ना, तो हथियार तो है नहीं, अब उसको ये नहीं पता, लिमिटेड बुद्धि के जो सुदर्शन चक्र है ये हथियार नहीं होता, ये सुदर्शन चक्र भगवान का सेवक है, ये हथियार नहीं है। सुदर्शन चक्र जब जाके किसी को मारे तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने हथियार मेरे ऊपर चला दिया, क्यों? हथियार तो ऐसा होता है जो किसी के पास भी हथियार हो, एक तलवार एक हथियार है, आपके पास भी हो सकती है, आपके पास भी हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है, धनुष बाण किसी के पास भी हो सकता है, भाला कोई भी हथियार किसी के पास हो सकता है, सुदर्शन चक्र कभी सुना है किसी के पास हो? या कहीं जाके एक सुदर्शन चक्र खरीद लो, जैसे हम कोई भी हथियार खरीद सकते हैं, तलवार, भाला, फरसा, कोई भी हथियार जाके खरीदा जा सकता है, कहीं सुदर्शन चक्र मिलेगा जो वास्तव में चलेगी? नहीं मिलता होगा, शायद पंजाबी बाग में मिलता हो तो फिर वो सुदर्शन चक्र कहाँ है? सुदर्शन पार्क उसको चलाना नहीं किसी के ऊपर नहीं तो आजकल के जीव तो पार्क उसके ऊपर चल गया तो वो वैसे ही निपट जाएगा। ये तो बहुत महाभयंकर जीव है। आपको मैं बताऊं एक आइडिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट द भागवतम टॉक्स अबाउट। इट सेज दैट हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ने जाके पूरी पृथ्वी, ये जिसके ऊपर हम बैठे हुए, इस पूरी पृथ्वी को उठा के जहां पे भी ये है वहां से उठा के नीचे गर्भोदय गोशन में छुपा दिया। कोई सोच सकता है ऐसी बात? बहुत से लोग पूछते हैं, अरे भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती, गोवर्धन पर्वत इस पृथ्वी के साथ उसका अगर वो लगाया जाए अनुपात तो क्या बनेगा? 1 to maybe 10 million। गोवर्धन पर्वत का रियल साइज इन कंपैरिजन टू दिस होल अर्थ 1 to 1 million, एटलीस्ट 10 million में भी तो कुछ भी नहीं है। और उसने पूरी के पूरे पृथ्वी लोग को उठा दिया, पूरा का पूरा प्लेनेट। कैसे? वो पृथ्वी पे पैदा हुआ, पृथ्वी पे रहने वाला जीव है, हम समझते हैं सब। और क्या कूप मंडूक वाली फिलॉसफी, 5 फुट का मैं हूं, हिरण्याक्ष क्या 10 फुट का होगा, शायद 20 का होगा। रामायण में कुंभकर्ण की हाइट दी हुई है, किसी ने पढ़ी है? रामायण में कुंभकर्ण की हाइट दी हुई है 200 मीटर, फुट की तो बात ही नहीं है, 200 मीटर। और कुंभकर्ण हिरण्याक्ष के आगे एक मक्खी था। हाउ आई विल देन कंपेयर बिकॉज दे वर नेवर देयर इन वन टाइम सो यू कैन नॉट कंपेयर, ऐसे तो कंपैरिजन मिलेगा नहीं। लेकिन जब रावण, रावण सब समझते हैं बहुत शक्तिशाली था, भगवान ने तो मारा उसको, लेकिन वो किसी के मारने से किसी के हाथ में आने वाला नहीं था, बहुत शक्तिशाली था। और उसके पृथ्वी पे चलने से जब वो थम करता था तो पृथ्वी कांपती थी, अगर वो थम करके ऐसे पृथ्वी पे चले तो पृथ्वी कांपती थी, इतना बल था उसमें। हम कितना भी थम करें इसके ऊपर, अभी बहुत थम्पिंग करके केशव मुरारी प्रभु नहा रहे थे बारिश में, लेकिन पृथ्वी नहीं हिली, नहीं, लेकिन रावण के दम करने से हिली। ये रावण की शक्ति है। अभी जब रावण को बहुत लगने लगा कि हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूं और ब्रह्मा के वरदान के सारे कवच मैंने पहन लिए, तो उसको एक प्रतिद्वंद्वी चाहिए था। प्रतिद्वंद्वी के लिए रावण ने कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया कि मैं शिव से युद्ध करूंगा। ये ब्रह्मांड पुराण में कथा। शिव से युद्ध करने के लिए गया और शिव जी उससे युद्ध करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, कि नहीं मुझे नहीं करना है। जब वो माना नहीं तो अपने डबरों को भेज दिया, रावण को लगा मेरे अपमान किया जा रहा है, एक डमरू मेरे से लड़ने आया है, मतलब डमरू तो कोई शस्त्र भी नहीं है, कम से कम कोई शस्त्र तो भेजा होता, खाली एक डमरू को मेरे से लड़ने भेज दिया कि मुझे अपना बल शिव जी को दिखाना हो। तो उसने नीचे हाथ डाला कैलाश पर्वत में और पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा दिया शिव समेत, शिव जी उसके ऊपर बैठे, शिव जी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द कैलाश पर्वत एंड ही लिफ्टेड द होल कैलाश। जब शिव जी को प्रतीत हुआ कि हाँ वास्तव में किसी ने उठा लिया कैलाश पर्वत, मेरा सब कुछ हिल रहा है, शासन यहां, तो एक पुट पुट डाउन, अपना पैर नीचे रखा और उसको दबाया, तो रावण का हाथ नीचे, अब वो कैलाश उसके ऊपर और रावण का हाथ अंदर, अब वो बाहर नहीं आए। शिव जी ने जकड़ लिया पैर से उसका हाथ भी कैलाश के अंदर, देन ही गेव अप एंड देन ही चैंटेड अ स्तुति शिव जी के ग्लोरिफिकेशन में। उसने वहीं एक संस्कृत की स्तुति नई लिखी, जैसे केशव कश्मीरी ने 100 श्लोक गंगा जी के ग्लोरिफिकेशन में लिखे थे, ऐसे शिव जी के ग्लोरिफिकेशन में रावण ने उसी समय शिव स्तुति लिखी। आज भी है वो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो शिव जी ने पैर अपना ऊपर कर लिया दोबारा से व्यासासन पे और रावण का हाथ धो लिया। तो शिव जी वांटेड टू शो हिम कि उसका अस्तित्व क्या है वास्तव में। तो शिव जी ने उसको कहा कि तू जा आगे, वो पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, उसके आगे एक और पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, उसके आगे एक बहुत बड़ी काली सी चीज पड़ी हुई है, तू जा और पूरी अपनी पूरी शक्ति से उसको हिला के देख। ये वो है जिसने अभी पूरा कैलाश पर्वत उठाया था शिव समेत, उसको वो चीज हिलाने के लिए कि तू अपना स्ट्रेंथ अपनी टेस्ट करनी है, वहां जाके उसको हिला के देख। गया रावण, गया वो वस्तु उसको मिल गई, बहुत बड़ी भयंकर विशाल, दूर से लग रहा था कई पर्वत है लेकिन वो पर्वत नहीं था, वो कोई और चीज था। उसको हिलाने के लिए इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो नहीं हिला। अब ये पसीने में तर बतर वापस शिव जी के पास आ गया कि मेरे से नहीं हिला, क्या है वो, इस संसार में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसको मैंने हिला सकता, पूरा कैलाश पर्वत मैंने शिव समेत उठा दिया, ये क्या चीज है। शिव जी ने कहा अच्छा ठीक है, शांत, कृपा करके मुझे बताओ तो सही, आखिर वो क्या था जो मैं हिला नहीं पाया। कि वो हिरण्याक्ष के कान का कुंडल था, हिरण्याक्ष के कान का कुंडल था जिसको रावण हिला नहीं पाया। नाउ यू सी द कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड द साइज। हम समझते हैं कह रहे हिरण्याक्ष क्या होगा, रावण से डबल होगा, लेकिन कोई कंपैरिजन है जो किसी के कान का कुंडल नहीं हिला सकता। वो जीव कितना तुच्छ है उसके आगे जिसके कान का कुंडल भी नहीं हिला पाया वो। और साथ में ही आपको ये भी आइडिया मिल गया कि हिरण्याक्ष कितना महान भयंकर होगा जिसके कान का कुंडल इतना बड़ा कि कई पर्वत श्रृंखलाओं के साइज का, तो केवल कान का कुंडल है जिसको रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हिला नहीं पाया। जो व्यक्ति इतना ऐसा कुंडल पहन सकता है, क्या वो इस धरती को हिला सकता है। नाउ इट बिकम्स बिलीवेबल कि जो व्यक्ति इतना बड़ा कुंडल धारण कर सकता है, कुंडल क्या किसी को पता भी नहीं चलता, मैंने पहना भी है अभी, पता तो चलता है बट यू फील द वेट, नहीं कुछ खास नहीं पता चलता, नेग्लिजिबल वेट होता है। तो जिस कुंडल का वेट हिरण्याक्ष के लिए नेग्लिजिबल था, रावण अपनी पूरी ताकत से उसको हिला नहीं पाया। ये कंपैरिजन है बिटवीन हिरण्याक्ष एंड रावण। हिरण्याक्ष से और अपना कंपैरिजन तो कभी करना ही नहीं बैठना। Don't even go there, don't even start it. ये तो केवल रावण से कंपैरिजन है, जो कि वास्तव में कंपैरिजन ही नहीं है। जो किसी का कान का कुंडल नहीं रह पाया उससे क्या कंपैरिजन। एक कान का कुंडल एक महिला जो पहनती है उसको हार्डली पता चलता है कि हाँ पहना है। कोई छोटी मोटी चीटियां आए उसको नहीं हिलाया जा सकता, उसको नहीं हिला सकता। इतना बड़ा इतना डिफरेंस है, एक जरा सी चीटी। तो इससे पता चलता है कि हिरण्याक्ष का क्या साइज होगा। वास्तव में शायद उसने पृथ्वी को उठा के गर्भोदक पोषण में जाके छुपा दिया। और उस समय ये जो जीव है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, इनको चलने के लिए पृथ्वी की जरूरत नहीं होती। ये एक लोक से दूसरे लोक जाने की शक्ति रखते हैं। अगर कोई हमारे जैसा सोचे अरे पृथ्वी का तू तो जीव है और पृथ्वी को जाके गर्भोदक कोशन में छुपा आया तो फिर तू कहां है, पृथ्वी के साथ तुझे भी चले जाना चाहिए था। नहीं, वो किसी भी पाताल लोक में निवास कर सकता है। कितने सारे पाताल हैं, पाताल अतल तल तलातल वितल सुतल, उन सबको नहीं ले गया, केवल पृथ्वी को ले गया। तो सारे पाताल उसके लिए खुले पड़े और वो ऊपर भी जाने की शक्ति रखता है। तो इसलिए ये पृथ्वी को उठा के दूसरी जगह गर्भोदक कोशन में जाके छुपाया ना, जो एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है। वो जब हम ये डिस्क्रिप्शन सुनते हैं थोड़ा सा बिलीवेबल लगता है कि वास्तव में हो सकता है हिरण्याक्ष ने ऐसा कर ही लिया। आगे क्या बता रहे हैं शिल प्रपात, चल प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसके भाई का वध विष्णु ने वराह का रूप धारण करके किया था। नाउ हिरण्याक्ष के साइज का आपको आइडिया हो गया। अब हिरण्याक्ष से लड़ने के लिए कोई जीव चाहिए, उससे लड़ने के लिए जो वराह रूप में भगवान आए, इतने बड़े रूप में आए कि उनके आगे हिरण्याक्ष भी एक छोटा सा पिल्ला नजर आ रहा था। जैसे एक फुली ग्रोन अप आदमी के सामने एक छोटा पिल्ला खड़ा कर दो, कुत्ते का पिल्ला, उस तरह से वराहदेव के सामने ये हिरण्याक्ष का साइज था। और हिरण्याक्ष वराहदेव के साइज से घबराया नहीं, अत्यंत बलवान था वो और पूरी तरह से वो वराहदेव के ऊपर अपने जो कुछ भी हथियार थे लेके वो दौड़ पड़ा। और अभी उसको इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आया था। जब गुस्सा आ जाए तो व्यक्ति बलहीन हो जाता है। तो वराहदेव चाहते थे कि इसको गुस्सा आए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए वो वहां चुपचाप खड़े कि कर कितने भी प्रहार करेगा मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना मैं कुछ बोलूंगा ना मैं तेरे को प्रत्याहार करूंगा, मैं तेरे को वापस मारूंगा भी नहीं। That made him mad. कि ये लड़ने आया मेरे से लड़ता भी नहीं है, मैं मारता हूं तो ये इतना भयंकर प्रहार मैं अपने गदा से कर रहा हूं और ये उफ भी नहीं कर रहा। दैट मेड हिरण्याक्ष एब्सोल्युटली मैड, फ्यूमिंग। जब वो बहुत मैड हो गया तब वरादेव ने उसकी पिटाई करनी शुरू करी कि अब तू अपने आउट ऑफ योर माइंड, सो नाउ आई इट्स गुड टाइम टू बीट यू अप। सो दैट्स हाउ लॉर्ड वरादेव टुक केयर ऑफ हिरण्याक्ष। आई थिंक दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे। इज देयर एनी क्वेश्चंस? हैव आई बोर्ड यू एनफ? नो? एनी क्वेश्चंस? Adhijis, no questions. Thank you very much. Grandraj Shrimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaur Premananda.